آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسب تم، جو تم نے کمائی کی ہے، جو تمہاری کمائی میں سے ہے. اس لیے کہ انسان نا قیامت کے دن دیکھے گا، ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف اس کا اعمال نامہ ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو، لیکن اللہ کے راستے میں دو جہنم سے بچنے کے لیے. تو خرچ کرنا کتنا ضروری ہے. ہمیں اور سارے خرچ یاد رہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ بھول جاتا ہے. تو فرمایا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے فرمایا. پتہ ہے یہ رب کی طرف سے کال ہے، الرٹ ہو جانا چاہیے اس پہ. اور ایک چیز ایمان ہے جس سے اللہ نے پکارا، نہ کسی کے خاندان کے نام سے پکارا، نہ علاقے کے نام سے پکارا، نہ زبان والوں کے نام سے زبان سے پکارا، فلان زبان بولنے والوں، عربی بولنے والوں، انگریزی بولنے والوں. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ان پہچانوں سے کوئی اہمیت نہیں ہے، ان پہچانوں کی کوئی، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کون سی زبان بولتا ہے، کون سے رنگ والا ہے، کون سے علاقے والا ہے، کون سے خاندان والا ہے، کون سے ملک والا ہے. یہ ہمارے نزدیک یہ پہچانیں بڑی اہم ہیں، جن کو ہم نے سب کچھ بنایا. اللہ کے نزدیک جو ہماری پہچان ہے نا، وہ ایمان ہے، اور سب سے بڑی اہمیت ایمان کی ہے. کاش ہمارے نزدیک بھی یہ اہم بن جائے، جس ایمان کی وجہ سے ہم سب ایک دھاگے میں پروئے میں، ہم سب کنیکٹڈ ہیں اس ایمان کی وجہ سے، ورنہ تو سب بکھرے بکھرے رہیں گے، فلاں فلاں قوم کے، فلاں فلاں ملک کے. تو آج ہم دیکھیں، آج کیا دنیا میں میری اور آپ کی یہی پہچان ہے جس پہچان سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے؟ یا ہم زیادہ انگریز، اور یا ہم زیادہ انڈین، اور زیادہ پاکستانی، اور زیادہ عربی، یا یہ زیادہ اپنی پہچان کرواتے ہیں، یا ایمان کی پہچان کرواتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک ایمان والی ہوں، اور یہی نظر آتی ہوں. انفقو، ان کو حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، انفقو، خرچ کرو. کس میں سے خرچ کریں؟ یا اللہ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے، پاک کے علاوہ کسی کمائی کو نہیں قبول کرتا. یعنی اگر آپ نے سود کی کمائی میں سے خرچ کیا، شراب کی کمائی میں سے خرچ کیا، اور کسی حرام کمائی میں سے خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے، جیسے کئی وہ دکھاتے ہیں کہ بڑے جی چور تھا، اتنا بڑا ڈاکو ہے، اس کے بعد جی شام کو وہ غریبوں مسکینوں کے اندر بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا لوٹاتا ہے. اور وہ ایسی کہانیاں بھی کوئی رابن ہوڈ اور فلانے کی بنائی ہوئی کہ جو ہے نا، دیکھو وہ کتنے ان کو ہیرو بنا کے دکھایا تھا. نہیں، جو صدقہ، جو کسی کو ہیلپ، کسی کو خیرات، اگر حرام سے کی گئی ہے، حرام مال میں سے نکالا گیا، وہ قبول نہیں ہے. طیب میں سے نکالو، پاک میں سے نکالو، کمائی کا سورس بھی پاک ہو اور چیز بھی پاک ہو. یہ نہیں کہ جو چیز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ حرام ہو، وہ بھی حرام نہ ہو. تو دونوں چیزیں ہی صحیح ہونی چاہیے، کمائی بھی اور چیز بھی. ماں کسب تم، جو تم کماتے ہو اس میں سے، جو تمہاری محنت کی کمائی ہے نا، چاہے تم جاب کرتے ہو، چاہے تم بزنس کرتے ہو، چاہے تم کوئی ٹریڈنگ کرتے ہو، جو بھی تمہاری کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے. زمین میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ سونا چاندی نکلتا ہے، معدنیات نکلتی ہیں، منرلز وغیرہ، آئل ہے، گیس ہے، پانی ہے، فصلیں ہیں، پھل ہیں، اور اجناس ہیں جو بھی نکلتی ہیں وہ. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں یہ فشنگ وغیرہ کا جو کام ہے، مائننگ کا، مائنز کا کام ہے، یہ سب زمین میں سے ہی ہے نا چیزیں نکل رہی. تو ان میں سے بھی خرچ کرو. یعنی کوئی اگر ان میں سے کوئی کام کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیت ہے کسی کے، زمینیں ہیں، اس میں پھل لگتے ہیں یا اناج لگتا ہے، اس میں سے بھی خرچ کریں. کیونکہ یہ نکالا، اخرج نہ، ہم نے نکالا ہے یہ. ٹھیک ہے، تم بیج ڈالتے ہو، تم پانی دیتے ہو، تم سوچتے ہو کہ میرا ہے، میری محنت ہے. نہیں، نکالا ہم نے، तो तुमने उसी में से खर्च करना है जो हमने निकाला है। तुमने खुद तो नहीं निकाला ना। अंतुम तज़रऊना हु अम नहनु ज़ारिऊन, सूरह वाकिया में अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने तुमने इसको निकाला है, तुमने इसको पैदा किया, तुमने ज़रात जो भी तुम जमीन से वो निकालते हो गए, तुम उगाते हो या हमने उगाया है? तो अल्लाह ही उगाने वाला ना, उसमें से खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु, और ना तुम कसद करो, ना तुम इरादा करो, किसका? खबीस का। मिन्हु तुनफिकून, उसमें से तुम खर्च करते हो, ताकि तुम उसमें से खर्च करो। तुम ये ना इरादा करो कि तुम खबीस निकाल के खर्च करो, इसमें से खर्च करो। यानी क्या मतलब है? जो रद्दी माल है, जो नकारा माल है, जो गली सड़ी चीजें हैं, फजूल चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उन चीजों में से नहीं सोचो कि मैं खर्च करूं। मजा आई ना? तो फिर इसका मतलब किस में से खर्च करना चाहिए? चौथा पारा शुरू होता है ना, लन तनालु बिल्ला बिर्र हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पा नहीं सकते जब तक कि तुम उसमें से ना खर्च करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। रद्दी चीजें तो हमें नहीं पसंद आती, तो हम अपने लिए तो वो पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम दूसरे को देने लगते हैं तो जो गंद बला घर से उठा के वो कहते हैं कि ये चलो फलां को दे देते, ये चलो अल्लाह के रास्ते में दे देते। तो ऐसा ना करो कि जब जैसे कपड़े बिल्कुल फट जाएं तो तब देने शुरू, जब जूते बिल्कुल नाकारा हो चुके हों तो तब अल्लाह के रास्ते में मैं दे रही हूं। इसलिए कि तुम ये नहीं सोचते कि तुम दे किसको रहे हो, ये वो उस साहिल को नहीं दे रहे तुम, जो तुम्हारे सामने हाथ फैला के खड़ा हुआ, तुम उसको नहीं दे रहे, तुम अल्लाह को दे रहे हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इस खबीस का इरादा ना करो कि इसमें से खर्च करो। वलस तुम भी आखिदी इल्ला अन तुमिदू भी फी, और तुम खुद तो लेने वाले नहीं हो, हालांकि हालांकि तुम खुद तो लेने वाले नहीं हो इसको। यानी अगर तुम्हें ये दिया जाए खबीस जो है, यानी जो नापाक है, जो रद्दी माल है, जो ऐसी चीजें हैं बेकार सी, वो अगर तुम्हें दी जाए तो तुम तो खुद इसको लेना पसंद नहीं करोगे। सोचो तो सही, तुम लेना चाहोगे? इल्ला अन तुग़मिदू फी, सिवाय इसके कि तुम चशम पोशी कर लो इसके बारे में। अगर तुम इग्नोर ही कर दो बिल्कुल, यानी अब क्या है, अगर अब जाहिर है अब इंसान कभी कभी इसलिए इग्नोर करना पड़ता है कि उसकी जरूरत होती है, या कभी इसलिए कि चलो अब ये मुझे दे ही रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। इवन तोहफा तक, दुनिया में कई तोहफे होते हैं आपको, ऐसे मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आप लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर आप बस इस तरह से इग्नोर करके ले लेते हैं कि अब क्या किया जाए, दूसरा दे ही रहा है। चशम पोशी कर लेते ना, आंख बंद कर लेते हैं उस तरफ से। तो यानी तब तुम पकड़ ही लोगे उसको चीज को, लेकिन वरना तुम अपने लिए तो कभी नहीं चाहोगे कि मैं ये चीज मुझे दी जाए। अल्लाह ताला ने पता है जो रोल्स है ना वो रिवर्स कर दिए यहाँ पे। ठीक है, आप थे देने वाले, तो आपसे अल्लाह ताला ने फरमाया गंदी सड़ी हुई चीजें ना लोगों को दिया करो, जो तुम खुद नहीं लेना चाहते। उसके बाद अल्लाह ताला ने रोल को रिवर्स किया। सोचो कल को अगर तुम इस लेने वाले की जगह खड़े हो, इसलिए कि वक्त का कोई पता नहीं होता, याद रखे आज जो बादशाह है ना वो कल फकीर हो सकता है। तो आपको नहीं पता कि कल मेरी सिचुएशन क्या होती है। अल्लाह ताला फकरो फाके से महफूज रखे, किसी के आगे हाथ फैलाने से महफूज रखे, मोहताजी से हम सबको महफूज रखे। लेकिन यू नेवर नो, आप अपने सामने देखते हैं, बाज लोग एक दिन कुछ होते हैं और अगले दिन वो मोहताज होते हैं कौड़ी कौड़ी के। यू डोंट नो, कोई नहीं अपने ऊपर ये कह सकता जी हम तो इतने हैं तो हमारा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सोचो कि कल रोल रिवर्स हो जाए, अगर तुमको यही चीज दी जाए जो आज तुम किसी को दे रहे हो, तुम किसी और के सामने हाथ फैला के खड़े हो जाओ और वो तुम्हारे हाथ में ये चीज रख दे, तो तुम्हारी इज्जत नफ्स गवारा नहीं करेगी इसको लेना। दूसरा, तुम्हें अपना रद्दी माल दे दे सदके में, खैरात में, जकात में, तो खुद बताओ तुम क्या फील करोगे। देखा है आपने कैसे अल्लाह ताला सिखाती हैं, कैसे अल्लाह ताला समझाते हैं कि देखो अब कैसा लग रहा है तुम्हें। इग्नोर करके ठीक है, अगर दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल लेने को, फिर भी तुम अब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि तुम आंख बंद करके ले लेते हो, अदरवाइज तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं करेगा लेने का, तो फिर इसको क्यों ऐसे देते हो जो तुम खुद नहीं अपने लिए लेना चाहते। उस वक्त सोचो तुम्हारा दिल कैसे रो रहा होगा, मगर जुबान खामोश होगी और तुम बस चशम पोशी कर लोगे। आलमू जान लो, क्या जान ले अल्लाह, इन्नल्लाह गनी उन हमीद, बेशक अल्लाह बेनियाज है, वो अपनी जात में तारीफ वाला है। वो देखना कोई ये ना समझे कि अल्लाह को जरूरत है, वो नहीं, वो तो बेनियाज है, उसको तुम्हारी किसी चीज की भी जरूरत नहीं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं, वो तो खुद गनी है, खुद देने वाला है, सब उसके मोहताज हैं, तुम फुकारा हो। और वो हमीद है, खुद तारीफ वाला है, ऐसी हस्ती जो अपनी जात में खुद तारीफ वाली हो, तुम तारीफ करो ना करो उसकी तारीफ हो रही है। जैसे कोई चीज होती है ना, देखें आप अपनी किसी ग्रज की वजह से, मिसाल के तौर पे कोई बहुत खूबसूरत चीज है, अब आपका कोई ग्रज है उससे, जिस बंदे ने उसको बनाया, अब आप तारीफ नहीं करते, बस ऐसे ही हूं करके चले जाते हैं। लेकिन वो तस्वीर खुद बोल रही है कि वो कितनी खूबसूरत है, आप तारीफ नहीं भी करते तो वो थोड़ी उससे उसकी तारीफ नहीं हुई तो वो कुछ उसमें कमी आ गई। ये मैं ऐसे एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या खुद अपने आप में तारीफ वाला होने का क्या मतलब है। तो अल्लाह की जात वो है कि कोई भी नहीं तारीफ करे ना, तब भी वो खुद इस काबिल और ऐसा है कि उस जैसे तारीफ किया गया, वो खुद ही अपने आप में तारीफ वाला है। अश्शैतानु याइदुकुमुल फकर, शैतान जो है ना वो तुमसे वादा करता है मोहताजी का, जब तुम अपनी जेब से कुछ निकालने लगते हो तो वो कहता है हाय क्या कर रही हो, तुम्हें खुद तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही सही से, तुम दे रहे हो आगे से आगे, तो तुम खुद तो सोचो कि तुम क्या कर रही हो। अच्छा अब इंसान जो होता है ना वो बहुत एकदम वो हो जाता है कि हाँ वाकई मेरी तो इतनी, उसकी ना फक्र उसके सामने ला ला के दिखाता है शैतान, उसको ये करके दिखाता है कि जैसे तुम्हारी अपने लिए क्या फिर बचेगा, तुम क्या करोगी, तुमने तो ये अभी खरीदना है, ये खरीदना है, ये करना है, वो करना है। तो इंसान फिर आके इतना इस मामले के अंदर तंग दिल हो जाता है, मुट्ठी नहीं खोलता। ये शैतान के वादे हैं जो फरेब के सिवा कुछ नहीं, तो खैर के कामों में शैतान ये कराता है सिर्फ, जब अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना होता है। और क्या करता है वह, यामुरुकुम बिल फहशा, और हुक्म देता है तुमको बेहयाई का, यानी शैतान फकर से का वादा करता है कि अब तुमने खर्च किया ना तो देख देना फिर ये हो जाएगा, फिर कहां से करोगी, कल को तुम्हारी ये जरूरत है। ऐसी जरूरतें जहन में लेकर आता है, ऐसे दिल के अंदर डालता है ख्याल, और वहां से रोक देता है। और हुक्म किस चीज का देता है, फहाशी का। फहाशी के अंदर सिर्फ जिनाकारी या ऐसी और कोई वो वाली सिर्फ बात नहीं है, हर अल्लाह की नाफरमानी जिसमें इंसान हद से निकल जाए ना, वो सब फहाशी के काम है। तो कैसे हुक्म देता है कि अल्लाह के रास्ते में रोक दिया लगाने से, अब कहाँ लगाए माल, अब दिल में डालता है फलां जगह लगा दो, फलां जगह लगा दो, फजूल जगहों पे लगवा देता है, अब कुछ बचता ही नहीं अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए। तो बुराई के कामों में खर्च करने का हुक्म देता है, इसीलिए आप देखें ज्यादातर लोग जो बहुत मालदार होते वो अक्सर उनको उनका माल जो लगता है ना वो नेकी की जगह पे नहीं लग रहा होता, बुराई की जगहों पे खर्च हो रहा होता है। क्योंकि आप जाहिर है देखें खुद ही सोचें, जब इंसान अल्लाह के रास्ते में नहीं देगा, माल उसके पास बहुत है, अब माल जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, अब उसको ये खुजली होने लगती है कि मैं इस माल को दिखाऊं तो सही लोगों को, लोगों को ऐसे पता चलेगा हमारे पास कितना पैसा है। आप वो दिखावे के लिए, वही वाली बात आ गई ना, शो ऑफ, रियाकारी, दिखाना दिखाना, ये जिंदगी का एक यानी मकसद ही बन गया कि अब जो चीज हमारे पास है अब वो घर में अगर पड़ी हुई है, घर में पहन लूंगी, घर में खा लूंगी, घर में कुछ करूंगी तो ये लोगों को कैसे पता चले। तो अब दिखाना है, अब दिखाने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। अब कोई पार्टी करेंगे, कोई शादी होगी, या कोई और इस तरह का कोई फंक्शन रख लेंगे जिसमें इंतहाई इसराफ, इंतहाई इसराफ, शो ऑफ, सारी चीज ही शो ऑफ होती है, पैसे की नुमाइश। फिर आगे से आगे मुकाबला बाजियां शुरू हो जाती हैं, उसने इतने का किया तो मैं इतने करूं, वो उसने इतनी चीजें की दी थी तो मैं इतनी दूं। अब शादियों में भी क्या होता है, माल की नुमाइश, जिस्मों की नुमाइश, कपड़ों की नुमाइश, जेवरों की नुमाइश, ऐसे लगता है कि एग्जीबिशन लगी हुई है। और भी फहाशी के कितने सारे काम होते हैं, नाच गाने हैं, और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें, मेहंदियों के नाम के ऊपर क्या क्या फहाशी होती है। कहता है वहां पे लगाओ, इस्लाम में तो ये चीजें नहीं थी, इसने इन चीजों पे लगवाया, इस्लाम में तो निकाह और वलीमा। अब जब आपका माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा ही नहीं तो फिर कहीं तो लगेगा ना, तिजोरियों में तो नहीं बंद पड़ा रहेगा, तो कहीं तो लगाना है ना। तो अब बजाय इसके के लोगों की भूख मिटाने के लिए लगाते, लोगों की जरूरियात पूरी करने के लिए लगाते, फहाशी और नुमाइश के कामों पे लगा रहे हैं। अब सोच लेने फिर ऐसे माशरे का क्या हाल होगा जहां पे लोग हर वक्त, आप देखें तो हमारे मुल्कों में लोग इस चीज का रोना रोते रहते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, हाय 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 हाय, लेकिन उन्हीं लोगों की शादियां देखें तो नुमाइशी प्रोग्राम लगता है। फिर समझ नहीं आती कि अब फिर कहां से, फिर तो जिंदगी सादा हो जानी चाहिए ना, फिर तो शादियां इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, वो एक शो ऑफ का प्लेटफॉर्म बनी होती है, तो तब कहां से आ गया। इसलिए कि शैतान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से तो रोकता है, हाँ जब पार्लर पे जाएंगे तो तब नहीं खर्च करने पे रोकेगा, मेहंदी करनी होगी तब नहीं रोकेगा, कॉन्सर्ट्स में जाना होगा तब नहीं रोकेगा, फिल्मों पे लगाने के लिए नहीं रोकेगा, फायरवर्क्स करनी है और घरों के ऊपर लाइटें लगानी है उससे नहीं रोकेगा कि उस पर खर्च करो। फिर इंसान क्या कहता है, लोग बच्चों के लिए ही तो कमाते हैं, अगर इन पे ही ना खर्च किया तो फिर क्या। कभी इंसान कहता है लोग क्या खाने के लिए तो कमाते हैं, खाया ही ना अच्छा तो फिर क्या। तो इंसान कितना उसके ऊपर खर्च करता है, फिर सैरो तफरी के ऊपर कितना खर्च होता है, उल्टे कामों पर कितना खर्च होता है, देखें तो सही आप गिनने लगे आप तो कितने ही सारे बुराई के, खुली बुराई के, गुनाह के काम है जिन पे खर्च करा रहा है शैतान। और रोक कहाँ रहा है कि बस यहां पे ना दें, कहीं डोनेशन देना पड़ गया, कहीं किसी की जरूरत सामने आ गई तो वहां पे $1 निकालना भी इंसान के लिए ऐसे हो जाता है कि नहीं क्या है, हमारे तो अपनी इतनी जरूरतें हैं। तो ये साफ समझ जाया करें कि ये शैतान के फरेब है। जब इंसान बाजार जाता है तब तो कभी नहीं सोचता कि हाय मैं गरीब हो जाऊंगा इतना खर्च कर लिया तो, है ना, सोचिए जरा। जब हम किसी बुटीक पे जाते हैं क्या कभी ये ख्याल आता है कि हाय कितने इतना खर्च कर लिया तो क्या होगा। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ضला, और अल्लाह वादा करता है, एक अल्लाह का भी वादा है। शैतान ने दो वादे किए ना, एक फकर का और फिर फहाशी का हुक्म देता है, अल्लाह का वादा है मगफिरत का और फजल का। अल्लाह वादा करता है और शैतान वादा करता है, और शैतान के वादे झूठे हैं और अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो तो तुम्हारे लिए बख्शिश है, यानी सदका करना इंसान के गुनाहों का कफारा बन जाता है, बख्शिश का जरिया बन जाता है। हदीस में है ना, सदका गुनाहों की आग को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है। गुनाहों की वजह से हमने आग अपने लिए लगाई भी है ना, जहन्नुम की आग तैयार की भी, तो सदके की वजह से वो बुझ जाती है। और फजल, अल्लाह ताला का फजल भी, अल्लाह ताला अपने फजल का भी वादा देता है। फजल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इंसान का हक ना हो, हक से ज्यादा किसी को देना हमारा हक नहीं है, जो हमें अल्लाह से मिला है वो हमारा हक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमें देता है। तो ये उसका फजल है, यानी क्या मुराद है, रिस्क में कुशादगी। दुनिया में क्या होगा, रिस्क में कुशादगी होगी। यानी आपको जैसे बताया था 10 दुनिया में मिलेगा, 70 आखरत में मिलेगा, फिर 700 गुना का भी अल्लाह का वादा है, और बेगैर हिसाब का भी है, बगैर हिसाब के अल्लाह बेहिसाब देगा उसका भी वादा है। तो वो तो सारा उस पर डिपेंड करता है ना, आपकी नीयत, आपका इखलास कितना। तो अल्लाह का वादा क्या है, मगफिरत का और फजल का। अब हम चूज कर सकते हैं हमने कहाँ खर्च करना है, हमें किसके वादे पे ज्यादा यकीन है, अल्लाह के या शैतान के। अल्लाह कहता है तुम दो तो मैं मगफिरत करूंगा और तुम्हें और ज्यादा दूंगा, फजल दूंगा अपना। शैतान कहता है तुम फकीर हो जाओगे, मैं वादा करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि मैं कसम खा के कहता हूं कि सदका करने से माल कम नहीं होता। ये देखें, जो सच्चे हैं, जो सादिक हैं, खुद सादिक और अमीन कहलाते थे, काफिर भी जिनको सादिक और अमीन कहते थे, उन्होंने कसम खा के अगर फरमा दिया तो वो कितनी सच्ची बात होगी कि मैं कसम खा के कहता हूं कि सदका करने से माल कम नहीं होता। और शैतान कहता है कि कम हो जाएगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसत वाला है और जानने वाला है, बहुत वुसत वाला है, उसके खजाने बेइंतहा हैं, इतने खजाने उसके, ये ना सोचो कि वो इतना देगा तो फिर कैसे देगा, सबको देगा। अच्छा नहीं, अपने आप के ऊपर ना कयास करो, अल्लाह वुसत वाला है, वो गिन गिन के नहीं देता। हम तो गिन गिन के रखते हैं ना, वो गिन गिन के नहीं देता, वो बेहिसाब देता है। और वो अलीम भी है, इल्म रखने वाला है, हर चीज का जानने वाला है। उसके तो एक कुन कहने के ऊपर हर जिंदगी के कच्चे छट्टे सारे सामने आ जाएंगे। वो ऐसा अलीम है कि हर एक का हर अमल जानता है। हमने आयतल कुर्सी की तफसीर में देखा था ना कि अल्लाह ताला कितना इल्म वाला है, कैसा इल्म वाला है। खैर, उसके इल्म की जो हद है उस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, ये भी नहीं सही से अल्लाह ताला की इस सिफत को यकीन करें हम सही से नहीं जान सकते। वो हम अपनी छोटी सी लैंग्वेज के अंदर और छोटी सी दिमाग के साथ इतना कह देते हैं, हाँ अल्लाह को ये भी इल्म है जितनी हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह को ये भी इल्म है हमारे जिस्म पे कितने बाल हैं, अल्लाह को ये भी इल्म है हम कितनी दफा आंख झपका रहे हैं। भाई हमसे ज्यादा हम तो कमजोर लोग, कुंद जहन लोग इतना सही सिर्फ जान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जैसा अलीम है ना, उसके इल्म की वुसतों को, डेप्थ को हम नहीं पा सकते, हम जान भी नहीं सकते। पाना तो खैर, उसके इल्म तक जाना तो नामुमकिन है, हम ये भी नहीं जान सकते उसका इल्म है कितना। सुभान अल्लाह, तो वहां से अलीम है, उसको पता है सबका कि वो क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत देता है जिसको वो चाहता है, जिसको वो चाहता है हिकमत देता है। क्या चीज है हिकमत, हिकमत का माना क्या है? देखिए, हिकमत के बहुत सारे माने बयान किए गए हैं, आप सारे ही लिख लें। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान की समझ हिकमत है। इसी तरह हिकमत से मुराद दीन का इल्म है, हिकमत से मुराद खशियत है, दीन और दुनिया की इसलाह है, सही वक्त पर सही फैसला करने की जो कुव्वत है ना, एट द राइट टाइम राइट बात करना, राइट डिसीजन लेना, इसकी जो पावर है ना, वो भी हिकमत है। जैसे होता है ना, हमें बाद में बात याद आती है, ओ ये बात कहनी थी मुझे, तो ये चाहिए था, मैं ये बोलती है, ये हिकमत के खिलाफ है। हिकमत का मतलब होता है इंसान को राइट टाइम पे राइट बात आ जाए, समझ बूझ जो है, इनसाइट, किस मौके पे क्या करना चाहिए, ये हिकमत है। समझ आई? तो ये सारी हिकमतें हैं। हिकमत ये नहीं है सिर्फ पढ़ना, ये हिकमत नहीं है। हम कहें कि मैंने इतने पारे खत्म कर लिए, मेरे पास हिकमत आ गई। पढ़ लेने से जरूरी नहीं है कि हारे को हिकमत भी आ जाए, ठीक है। हाँ, पढ़ाई से, इल्म से आती तो है हिकमत, जैसे दीन का, कुरान की समझ हिकमत है, और सिर्फ एक दफा पढ़ लेना इस, ये हो सकता है हर एक को हिकमत ना आए। तो हिकमत दीन भी है, फिर हर अमल के पीछे जो हिकमत है वो भी हिकमत है ना। हमें जैसे हम कहते हैं कि इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, वो भी हिकमत है। कि क्या रूह है, इसका मकसद क्या है, इसका आयतों की हिकमत, वो भी हिकमत है, अल्लाह ताला के किसी हुक्म की हिकमत, ये भी हिकमत है। फिर कौन सा अमल अफजल है, कौन सा उससे सेकंड दर्जे पे है, कौन सा अमल इस वक्त मुझे करना चाहिए जो मुझे ज्यादा सवाब इससे मैं हासिल कर सकूंगी, वो भी हिकमत है। फिर माल में भी हिकमत होती है ना, कि माल को किस जगह पे मैंने खर्च करना है, ये भी इंसान को हिकमत से ही आता है ना, जिसमें मेरे आखरत का फायदा हो, और मैं किस जगह पे मेरा कितना फायदा मुझे मिलेगा, और दुनिया का भी फायदा मिल जाए, तो ये भी एक मत है कि इंसान दुनिया में किस तरह से खर्च करता है। तो यानी ये सारी हिकमत की बातें, तो हम आम जुबान में भी बोलते हैं जी इस चीज में बड़ी हिकमत है ये। तो अब उम्मीद है आपको ये बात इतनी सो समझ आ गई होगी। अब जहां तक इस चीज का सवाल है कि जो दीन का इल्म है या कुरान और हदीस पे महारत है, इसको भी हिकमत कहते हैं, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि कुरान का वो इल्म या हदीस का वो इल्म जिसमें इंसान को इन डेप्थ इल्म हो, यानी कुरान में जो हलाल हराम है, जो इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे अभी हमने मिसालें पढ़ी है ना, उनकी सही समझ, फिर इसी तरह नासिख और मनसूख का इल्म, ये भी हमने पढ़ा था कि क्या होती नासिख और मनसूख, और फिर ये सारी चीजों के ना, ये पढ़ने को तो इसे हर एक बंदा पढ़ सकता है, लेकिन उसकी तफसीर, इसकी समझ, ये है हिकमत। और ये अल्लाह जिसको चाहता है इनायत फरमाता है कि वो असल माने को पा ले, वो बात की डेप्थ तक पहुंच जाए, जुबान से उसके सही मतलब अदा हो, सच्चा इल्म, सही समझ इसे अदा हो, और इसकी वजह से फिर अल्लाह का डर उसके दिल में आ जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए एक मरफू हदीस में भी है कि हिकमत का राज अल्लाह का डर है, जो पीक है ना हिकमत की, वो जिस्ट जो हिकमत की है असल, वो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर। ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया के इल्म के बड़े बड़े माहिर होते हैं, और दुनिया का जो काम है ना, चाहे वो बिजनेस है, फैशन है, सियासत है, इसमें उनको बड़ी समझ होती है, लेकिन दीन के मामले में बिल्कुल अंधे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो दुनियावी इल्म में इतने माहिर नहीं है, कमजोर है, लेकिन कुरान के हदीस के माहिर हैं। बस ये है वो हिकमत, जिसको अल्लाह चाहे उसको दे दे, और जिसको ना चाहे उसको ना दे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको अल्लाह ने हिकमत दे दी ना, उसको बहुत बड़ी भलाई मिल गई, बहुत बड़ी नेमत मिल गई। ये बात समझने की है, ये तो है ना, हम समझते हैं कि बड़ी भलाई मुझे मिल गई, मुझे माल मिल गया, बड़ी जॉब मिल गई तो मुझे बहुत भलाई मिल गई, जी मैं हमारा बिजनेस तरक्की कर गया, बहुत बड़ी खैर हमें मिल गई, बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी खैर मिल गई। हालांकि यहां अल्लाह ताला ने क्या चीज फरमाई है, मौलाना माजिद दरियाबंदी फरमाते हैं कि हिकमत वो नेमत है जिसके मुकाबले में कोई और नेमत नहीं, कोई और नेमत नहीं है इसके मुकाबले में। हाँ जी, मौलाना माजिद दरियाबादी इनका नाम है, जिन्होंने ये बताया फरमाया कि इतनी बड़ी ये नेमत है। तो हम और चीजों को तो नेमत समझते हैं, हिकमत हमारे नजदीक कोई नेमत ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, माल नहीं, दौलत नहीं, और चीजें नहीं, हिकमत खैरे कसीर है। और चूंकि इसकी खैर नजर नहीं ना आती, माल के हमें फायदे नजर आते हैं, हिकमत के नजर नहीं आते, तो हमें इसकी कोई पाने की, इसकी तलब, इसका शौक ही नहीं है कि हमें हिकमत मिले। हिकमत का फायदा, इसकी उसकी खैर होना उसको पता चलती है जिसको ये मिल जाए, मगर ये मिलती बड़ी मुश्किल से असल में। तो ये अल्लाह का फैसला है, जिसको वो दे उसको ही मिलती है, और अल्लाह उसके लिए ही फैसला फरमाता है ना जो खुद तलब भी रखता है। अब आप हिकमत ले रहे हैं, ये बताएं। चलें एक हदीस बताती हूँ आपको, उसके बाद आप बताइएगा। मुसनद अहमद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारी रोजियां तुम्हें तकसीम की है ना, तुम्हारे अखलाक भी तुमने बांट दिए हैं। यानी इसके क्या पता चला, अखलाक भी अल्लाह ताला तकसीम करता है लोगों में। दुनिया तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों को भी देता है और दुश्मनों को भी, ऐसा है ना। फिरौन को मिली थी ना दुनिया, नमरूद को भी मिली थी दुनिया, तो अपने दोस्तों को भी देता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को, कितनी दुनिया मिली, और दुश्मनों को भी देता है। हाँ, दीन सिर्फ दोस्तों को ही अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। और अगर आपको दीन मिल रहा है ना तो मुबारक हो आपको, दीन सिर्फ दोस्तों को ही अता फरमाता है। और जिसे दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक कि उसका दिल और उसकी जुबान मुसलमान ना हो जाए। कोई बंदा मोमिन नहीं होता जब तक कि उसके पड़ोसी इसकी ईजाओं से बेखौफ ना हो जाए। अल्लाह हू अकबर। इससे क्या पता चला आपको, दीन सिर्फ अल्लाह अपने दोस्तों को देता है, और जिसको दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है। और हिकमत भी क्या है, दीन का इल्म। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं, यानी हिकमत। मैंने बताया ना हिकमत क्या है, दीन की समझ। तो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं उसी को देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी भलाई है। ऐसे ही सबको नहीं बांटी जा रहे, सबको तो पैसा सबको ही अल्लाह ताला दे देते हैं। काफरों को भी मिला है, उनको भी मिला है, मुनाफिकों को भी, मुशरिकीन को भी, ठीक है, सबको अल्लाह ताला दे देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो कोई ऐसी खैर कसीर नहीं है, मगर जो खैर कसीर है ना वो अल्लाह ताला हर एक को नहीं देता, उसके लिए स्पेशल लोग हैं जिनको अल्लाह ताला देता है, और वो अल्लाह के महबूब है। जिसको दीन मिल जाए वो अल्लाह का महबूब है, यानी जिसको हिकमत मिल जाए। तो इसके लिए दुआ किया करें, ऐ अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत सीखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखें। एक सहाबी कोई सवाल फरमाते थे ना, मिसाल के तौर पे हम हदीस में पढ़ते हैं अफजल अमल कौन सा है, तो आप देखें किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात फरमाते, दूसरे को दूसरी बात फरमाते, क्यों, अफजल अमल बदल गया क्या? नहीं, हिकमत है ये, किसको क्या बताना है, किसके हालात क्या है, किसमें क्या कमजोरी है। फिर इसी तरह आपकी डीलिंग्स जो हैं, जो नए मुसलमानों के साथ थी वो कैसी थी, और जो पहले के हैं पुराने हैं उनके साथ कैसी थी। फिर शुरू के दिनों में आपके किस तरह की मतलब आपने लोगों को किस तरह से डील किया, कैसे उनको चीजों का बताया और कैसे उनके साथ सारे मामलात किए, और बाद में कैसे किए, सारी हिकमत की बातें। तो अल्लाह ताला से हिकमत मांगे, क्योंकि हिकमत अगर हमें मिल गई ना तो हमें खैरे कसीर मिल गई। मगर ये हिकमत की बात एकदम यहाँ पे क्यों आ गई, अभी तो इन्फाक की बात आ रही थी और आगे भी इन्फाक की आ रही है। हाँ, तो पता चलता है कि हिकमत भी असल में सखावत से ही आती है। अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करता है ना तो उसे हिकमत में से हिस्सा मिलेगा, ठीक है। वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नदरतुम मिन नदरिन फइन्नल्लाहा यालमु। अल्लाहु अकबर। इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, जो भी तुम खर्च करो, कुछ भी तुम खर्च करते हो, जो भी तुम्हारा एक्सपेंस है, चाहे तुम अपनी जात पे खर्च करो, घर वालों पे खर्च करो, दोस्तों पे खर्च करो, बीवी के मुंह में एक लुकमा डालते हो, बच्चों के लिए कुछ लाते हो, सब, या जो तुम नजर मानते हो, कोई भी नजर, मिन नजरिन, नजरों में से कोई भी एक नजर मानते हो, तो अल्लाह उसको जानता है। वो अल्लाह जो दाने को जमीन में आप डाल के छुपा देते हैं उसका इल्म रखता है, तो क्या अल्लाह इसको नहीं जानता हुआ कि आपका डॉलर डॉलर कहाँ खर्च हो रहा है, वो जानता है। इस आयत को जब आप बाजार में जाए ना तब याद रखें कि मैं एक भी डॉलर निकाल रही हूं अपने पर्स से, अल्लाह इसको देख रहा है, अल्लाह जानता है। नफका होता है ना, जो आप कहते हैं नान नफका क्या चीज है, वो माल भी जो जरूरत जरूरियात जिंदगी पे खर्च किया जाए उसको नान नफका कहते हैं। तो डे टू डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, अल्लाह उनको जानता है। और ये जो 5 कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं जो हशर के मैदान में पूछे जाएंगे, अब वो पता है ना, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, माल कहाँ खर्च किया। अल्लाह हम कैसे इस चीज का जवाब देंगे, हमें तो खुद ही नहीं पता चलता हमने कहाँ खर्च किया। बाज चीजों पे इतना उड़ा देते हैं, बाज चीजों पे बिल्कुल ही मुट्ठी बंद कर देते हैं। यहाँ जो तुमने नजर मानी, कोई भी नजर जो आप मानते हैं, अच्छा नजर मानना क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ना मन्नत मानना, तो मन्नत मानना ठीक तो है, मान सकते हैं आप, लेकिन वो मन्नत अल्लाह के लिए हो, उसकी रजा के लिए हो और उसके रास्ते में हो। किसी बुजुर्ग के नाम की मन्नत मानना, किसी कब्र वाले के नाम की मन्नत मानना, किसी दरबार की, किसी मीजार की मन्नत मानना कि मैं वहां पे ये करूंगी, चादर चढ़ाऊंगी, फलां करूंगी, ये करूंगी, ये नहीं सही। और हाँ, अल्लाह के नाम की आप मान सकते हैं, ठीक है, मगर मन्नत जो होती है ना, एक मन्नत जो है वो कोई इतनी ज्यादा पसंदीदा नहीं है। और वो कौन सी है जिसमें आप ये कहते हैं, अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं 100 नफल पढ़ूंगी। ठीक है, आप पढ़ तो ले, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया ना तो मैं मस्जिद में इतने पैसे दूंगी। तो आपने कर तो लिया, लेकिन देखिए अल्लाह के साथ सौदेबाजियां ना किया करें। सौदा अल्लाह के साथ करना सही नहीं है, यानी कोई नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, क्या आप अल्लाह को कोई लालच दे रहे हैं कि तूने अगर ये कर दिया तो मैं इतने दूंगी। वो अल्लाह गनी है, वो कोई आपके ये $100 100 रुपए के पीछे बैठा हुआ है। इसीलिए हदीस में आता है, नजर ना किसी चीज को आगे करती है ना पीछे, हाँ बखील से उसके जरिए माल निकलवा लिया जाता है। यानी नजर मानने से ये ना समझे कि वो आपका काम हो जाएगा इस वजह से कि आपने कह दिया मैंने वहां पे $100 डालूंगी, नहीं, बल्कि इसके जरिए बखील से उसका माल निकलवा लिया जाता है। वैसे तो उसने देना नहीं था, चलो आप मन्नत मान के ही चलो दे दिया। हाँ ये आप मन्नत, एक अच्छी मन्नत भी होती है, वो ये है कि जैसे अब कोई इंसान मन्नत मान ले कि मैं मिसाल के तौर पे मैं अब एवरीडे 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ा करूंगी, मिसाल के तौर पे ईशा के बाद मैं 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ा करूंगी, ये एक अच्छी मन्नत है। आपने किसी चीज के साथ उसको कंडीशन नहीं किया कि ये होगा अल्लाह तू ये करेगा तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि वो आपका काम हो ना हो, लेकिन आप जरूर जो आपने कहा होता है वो कर लिया करें। मिसल मैंने कहा मेरा ये काम हो तो फिर मैं ये करूंगी, नहीं। अब वो काम मेरा होता है या नहीं होता, मैंने जो कहा है कि मैं इतने पैसे दूंगी, वो मैं पैसे निकाल दूं, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ सौदेबाजी नहीं करती। हाँ ये इंसान कह सकता है कि भाई मैं शुक्राने के तौर पर ये चीज करूंगी, तो शुक्र तो वैसे ही हर वक्त ही करना चाहिए अदा। तो समझ आ गई ना कि नजर मानने की इजाजत तो है, लेकिन ऐसी नजर कोई ज्यादा कोई पसंदीदा नहीं है, जैसे हमने ना अपना नॉर्म बनाया हुआ है कि ये हम इस तरह से मन्नतें मान मान के, और उसके बाद सोचे कि पता नहीं इस लालच में हमने अल्लाह से कोई काम, अल्लाह माफ करे नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे कि हमने अल्लाह से कोई काम करवा लेना अपना, तो ये कोई नऊज़ुबिल्लाह कोई लालच देना नहीं है कि अल्लाह ताला को ऐसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप नजर मानते हो ना, अल्लाह को पता है इस चीज का। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, याद रखना जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। और जालिम कौन है यहाँ पे, किनको जालिम कहा गया, जो बुखल से काम ले, या जो अपनी नजर मान तो लेते हैं उसके बाद पूरी ही नहीं करते, उस वक्त जज्बात में आके बस मैं तो ये करूंगी, मैं तो अब हर रोज रोजा रखूंगी, मैं हर रोज तहज्जुद पे उठूंगी, अब पूरी नहीं की जा रही, अब मुसीबत पड़ी हुई है, तो भाई फिर ऐसी नजरें मानते क्यों हो। तो ऐसे लोग जालिम है, उनका फिर कोई मददगार नहीं होगा अल्लाह के यहाँ, कोई उनको अल्लाह के यहाँ वहां पे बचाने वाला नहीं होगा। और इसी तरह जो पहली मैंने आपको बात कही कि जो बुखल से काम लेते हैं, यानी सदका भी नहीं करते, सही जगह पे खर्च नहीं करते, इधर उधर खर्च कर रहे हैं, अल्लाह को सब पता है तुम कहाँ खर्च कर रहे हो, वो सब जानता है, सब रिकॉर्ड है उसके पास। उस दिन उसने सारा, सिर्फ कुन कहना तुम्हारी जिंदगी का सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। तो फिर जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा वहां। तुबदू सदकाती फनिअम्मा हिया, अगर तुम सदके को जाहिर करके देते हो तो भी अच्छा है, जाहिर करना भी अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जाहिर करने से क्या फायदा हो जाता है, और भी कई लोगों को मोटिवेशन हो जाती है देने की। देखते ना आप, कई दफा वो मस्जिदों वगैरह में भी करते हैं, किस लिए वो ऐलान कर रहे होते हैं कि फला ने इतना दिया, फला मतलब ऐसे, उसे क्या होता है दूसरे लोग भी दें। तो चाहे तुम ऐलान करके दो, चलो वो भी अच्छा है, इससे दूसरों को चलो कोई तरगीब मिल जाती है, लेकिन वो तब तक अच्छा है जब तक, एज लॉन्ग एज आपके दिल में ये ख्वाहिश ना हो कि जो है ना मुझे भी शोहरत मिल जाए, ठीक है, वो तभी अच्छा है आपके लिए जबकि आपकी यही ख्वाहिश हो कि चलो मैं पहल करती हूँ, मेरे पहल करने से हो सकता है कि मेरे पीछे मुझे देख के कितने लोग दें, तो फिर उसका अजर भी मुझे मिल जाएगा। है ना, हदीस में है ना, नेकी का रास्ता दिखाने वाले को भी उतना ही अजर मिलेगा जितना नेकी करने वाले को। तो आप किसी को मसलन बता देती हैं कि देखिए वहां पे इतने इस वक्त जरूरत है, और आप वहां पे दें तो वो भी अगर देते हैं तो आपको भी अजर मिल जाता है। तो अच्छा, बाज़ उलमा ने फरमाया कि ये तुबदुत सदकात क्या है, जकात की तरफ इशारा है, जकात जाहिर करके देनी चाहिए, ठीक है, जकात का बताना चाहिए कि जकात दे दी, क्योंकि एक फर्ज है ना ये। व इन तुखफुहा व तूहल फुकारा फहुवा खैरुल्लकुम, और अगर तुम छुपाओ इनको और तुम दो इनको फकीरों को, मोहताजों को, तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। यानी अगर तुम छुपा के देते हो तो फिर तो तुम सेफ हो गए ना, सेफ है ना ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें कोई रियाकारी का डर नहीं है। हमारे जैसे जो कमजोर लोग होते हैं, जो अगर नहीं अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके दिल में आ ही जाता है कि अगर लोग देख लें मुझे, तो फिर उनके लिए क्या बेहतर है कि वो छुपा के ही सदका दें। जो लोग अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं तो वो इट्स ओके, वो फिर कह सकते हैं हाँ भाई और लोग भी मुझे देख के देंगे, उनको वो उनको पता है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो लोग कमजोर हो ना, वो छुपा के ने ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो भी तुम देते हो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, देना बेहतर है। अच्छा, कयामत के दिन ना 7 लोगों को अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। पता है ना आपको सूरज कितनी करीब होगा उस दिन, लोग साये के लिए तरस रहे होंगे कि कहीं साया हो, कितनी सोचें गर्मी होगी, क्या हालत होगी लोगों की उस वक्त। पता है अल्लाह ताला के अर्श का साया 7 किस्म के लोगों को मिलेगा, और वो उन 7 में से एक बंदा वो है जो इतना छुपा के सदका करता है कि दायां हाथ देता है तो बाएं को भी खबर नहीं होती। इसका क्या मतलब है, किसी को भी नहीं पता चलता, इतना छुपा के देखा, देखो दोनों हाथ कितने करीब है, लेकिन एक हाथ ने दिया दूसरे को खबर ना हो, इसका मतलब क्या है, यानी करीब करीब भी किसी को पता नहीं चलता, जितना हद तक छुपा सकता है वो छुपाता है। अब जाहिर है किसी फकीर को देंगे, हो सकता है उसको तो पता चल ही जाए, लेकिन जितनी हद तक वो छुपा सकता है वो छुपा के देता है, उसको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाना जो तेरे अर्श का साया पा सके उस दिन, जिस दिन तेरे साये के सिवा कोई साया ना होगा। एक हदीस में आता है, बड़ी प्यारी हदीस है वो, मुसनद अहमद में है, कि जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया था तो वो हिलने लगी थी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ पैदा करके उनको गाड़ दिया जिससे जमीन का हिलना बंद हो गया। फरिश्तों को पहाड़ जैसी इतनी सख्त चीज के ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई, तो उन्होंने पूछा बारी ताला, क्या तेरी मखलूक में पहाड़ से ज्यादा सख्त चीज कोई है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ है, लोहा पहाड़ से ज्यादा सख्त है। पूछा इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, आग इससे भी ज्यादा सख्त चीज है, क्योंकि आग देखे ना लोहे को पिघला देती है। पूछा इससे भी ज्यादा कोई और चीज है? फरमाया हाँ, पानी। पूछा, इससे भी ज्यादा सख्ती वाली कोई और चीज है? फरमाया, हाँ हवा। देखिए हवा पानी को भी उठा के ले जाती है ना। फरमाया, इससे भी ज्यादा कोई सख्त चीज है? फरमाया, हाँ, इब्ने आदम जो इस तरह सदका करता है कि बाएं हाथ को दाएं हाथ के खर्च की खबर भी नहीं होती। सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा ऊपर इब्ने आदम का वो सदका है जो वो छुपा के देता है। इतनी बड़ी चीज है वो कि पहाड़ों से भी ज्यादा बड़ी चीज, और लोहे से भी ज्यादा, और आग और पानी और हवा से भी ज्यादा। अल्लाह के नजदीक कितनी वैल्यूएबल चीज है ये इब्ने आदम का सदका। तो तुम दो इसको फकीरों को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। वयुकफ्फिरानकुम मिन सय्यिआतिकुम, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को। ऐसा सदका तुम्हारी बुराइयों को तुमसे ले जाएगा, दूर कर देगा। और बुराइयां क्या हैं? गुनाह तो हैं ही, बिल्कुल सही है, गुनाह हमारे लिए बुराइयां हैं। और हमारे लिए बुराइयां क्या चीज है? मुसीबतें, परेशानियां, मसले, बीमारियां, ये सब बुराइयां है ना। अल्लाह इनको इनमें से दूर कर देगा, यानी सारी की सारी तो नहीं सदके से दूर हो जाती, सारे गुनाह तो नहीं माफ हो जाएंगे, सारी मुसीबतें तो नहीं टल जाएंगी, मगर मिन सय्यिआतिकुम, इनमें से बाज को अल्लाह ताला दूर कर देगा। तो कितनी अच्छी, हमारे लिए फायदे की बात है कि सदके से गुनाह भी मिट जाए, मुसीबतें भी कई दूर हो जाती हैं, कई परेशानियां इंसान की दूर हो जाती हैं, कई मसले दूर हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, कई इंसान की बीमारियां जो उससे दूर हो जाती हैं सिर्फ ये सदका करने से। कितना, यानी दुनिया का भी कितना फायदा है इंसान का, और आखरत का तो है ही, कि मिन सय्यिआतिकुम, गुनाह अगर लिया जाए इससे मुराद, तो गुनाहों से भी इंसान की माफी हो जाती है, नहीं ये कफारा बन जाते। सदका जो है ना कफारा है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और बार बार अल्लाह ताला के इल्म की बात आ रही है, तअमलूना खबीर, बार बार अल्लाह के इल्म की बात आ रही है कि अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो, जो तुम्हारा अमल है। ये ना समझना कि जब तक किसी को पता ना चल जाए तो फिर कैसे होगा, फिर मेरे नामा अमाल में कैसे लिखा जाएगा, या अल्लाह को पता नहीं मेरे ऐलान करने से ही पता चलेगा, जब तक मस्जिद के स्पीकर में मेरा नाम नहीं आएगा, या फिर जब तक वहां पे प्रेसिडेंट की जगह मेरा नाम नहीं लिखा होगा, या मेरे नाम की कहीं बोर्ड नहीं लग जाएगा, तो किसी को कैसे पता चलेगा? किसी को तो वाकई नहीं तब तक पता चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता चल गया। अल्लाह बाखबर है, जो तुम बिल्कुल छुपा के करते हो उससे भी बाखबर है, इसका किसी को भी नहीं पता चलता, वो अल्लाह को पता चलता है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। या अल्लाह, हम तो बहुत छोटी छोटे 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 काम करने वाले हैं, बहुत मामूली काम, बड़ी मुश्किलों से वो भी करते हैं। अल्लाह तो उनको कबूल फरमा देना, हमारे नामा अमाल में उनको कायम रखना, कयामत के दिन तक कायम रखना या अल्लाह। और हमें छुपा के नेकियां करने की तौफीक अता फरमाना, हमारे जो अमाल है उनको रियाकारी से, उनको मन और अजा से महफूज रखना। अल्लाह हमें खलास अता फरमा, हमें खलास अता फरमा, हमें खलास अता फरमा, और हमें हिकमतें अता फरमा। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير